ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्, देवीं सरस्वतीं व्यासम्, ततो जयामुदीरहे। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्लोक आमी च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव वनिपाल संगै भीष्मो द्रोणो सूत पुत्रो तथासो सहसा मदीयैरपि योध्य मुखै वक्त्राणि ते तव रमना विशन्ति दंष्ट्र करालानि भयानकानि केचित् बिलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णै चूर्णतैर उत्तमांगै। आमी च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव वनिपाल संगै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो सहसा मदीयैरपि योध्य मुख्यै वक्त्राणि ते तव रमना विशन्ति दंष्ट्र करालानि भयानकानि केचित् बिलग्ना दशान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगै। आमी च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैव वनिपाल संगै भीष्मो द्रोण सूत पुत्रस्तथासो सहस्मदीयैरपि योध्य मुख्यै वक्त्राणि ते तव रमना विशन्ति दंष्ट्र करालानि भयानकानि केचित् बिलग्ना दशान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमांगै। भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तथासो भक्त्राणि ते रमणाभिसन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् बिलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गै आमि च त्वां दातराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहि एवावनिपालसङ्गै भीष्मद्रोणसूतपुत्रस्तथासो सहस्मदीयैरपि योध्य मुख्यै। और कोई बोलेंगे? अमी च त्वां धातराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहि वाणी मणिपाल संगै भीष्म द्रोण सूत पुत्रस्तथासो सहस्मदीयैरपि योध्य मुख्यै वक्त्राणि ते तव रमणाभिसन्ति दंशाकरालानि भयानकानि केचित् बिलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णतैरुत्तमाङ्गै। शब्द का अर्थ आमि ए च भी त्वाम आपको धातराष्ट्र धृतराष्ट्रस्य धृतराष्ट्र के पुत्र पुत्र सर्वा सभी सह सहित एवा निसंदेह अवनिपाल भी राजाओं के संगई समूह भीष्मदेव द्रोणा द्रोणाचार्य सूतपुत्र कर्ण तथा भी असौ यह सहा साथ अस्मदीयै हमारे अपि भी योद्धमुखै मुख्य योद्धा वक्त्राणि मुखों में ते आपके तवरमना तेजी से विशन्ति प्रवेश कर रहे हैं। दमस्त्रा दात करालानी विकराल भयानकानी भयानक केचित उनमें से कुछ बिलग्ना लगे रहकर दसन अंतरेषु दांतों के बीच में संदृश्यन्ते दिख रहे हैं चूर्णितै चूर्ण हुए उत्तमंगई सिरों से। अनुवाद और तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। शील प्रभुपाद की धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो उस तो वे उसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोणा कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकमात्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु कुरुक्षेत्र में एकात्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजय होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। वह गति कर्ण की होनी है, ना केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानंजना शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सौपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुत पादकमलं श्री गुरुना वैष्णवांश श्री रूपं सागर जातं सहगन रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्युतांश। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पिष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिते कृष्णाय कृष्ण चैतन्याय नामने गौरातिवसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंगायिते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो एक बार प्रभुपाद जी को एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था कि आप भगवान के इतने छोटे से रूप की पूजा क्यों करते हैं, भगवान तो अनलिमिटेड होते हैं, मतलब भगवान बहुत ही बहुत होते हैं, मात्रा में उनका सीमा नहीं है, असीमित होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया था कि उल्टा है, अगर आपको भगवान के विराट रूप को पूजा करना है तो विराट रूप इतना बड़ा है कि अगर ड्रेसिंग करना चाहते हो, कपड़े पहनाना चाहते हो तो कितना कपड़ा पहनाओगे, आपके पास उतना कपड़ा रहेगा ही नहीं, और कितना भोजन बना के खिलाओगे। तो प्रभुपाद जी ने बोला इसके लिए भगवान का यह विग्रह का रूप है, जहाँ पे कोई भी भगवान का भक्त भगवान का श्रृंगार कर सकता है, भगवान के लिए भोग बना के भगवान को भोग लगा सकता है और भगवान की सेवा कर सकता है। तो ये भगवत गीता का 11वां स्कंद विराट रूप बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि यहाँ पे भगवान अर्जुन को अपना महानता बता रहे हैं। इस संसार में अगर किसी व्यक्ति के पास सुंदरता होता है, पैसा होता है या शक्ति होता है या प्रसिद्ध होता है वो व्यक्ति या बहुत ज्यादा वैराग्य होता है या वो बहुत ज्ञानवान है तो हम उसको महान व्यक्ति मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जो भगवान श्री कृष्णा है वो ओरिजिन है इन सब चीजों का। पराशर मुनि जब भगवान का डेफिनेशन दे रहे थे, बता रहे थे भगवान कौन है, तो उन्होंने बताया था भगवान वो हैं जिनके पास छह ऐश्वर्य होते हैं। वो छह ऐश्वर्य क्या है? ऐश्वर्य से समाग्रस्य, वीरस्य, यशासि, श्रिय, ज्ञान, वैराग्य, छठ भग इति गणा। भगवान का अर्थ वो है जो सबसे ज्यादा सुंदर है, मोस्ट ब्यूटीफुल। इस संसार में जो भी हम सुंदरता देखते हैं वो कुछ समय के लिए रहता है। जब तक व्यक्ति छोटा बच्चा है या जवान है तो थोड़ा सुंदर दिखते हैं, बाद में सर के बाल पक जाते हैं और दांत टूट जाते हैं और जो भी सुंदरता है वो खत्म हो गई। लेकिन भगवान को ब्रह्मा संहिता में बताया गया है अनादि पुरुष पुरुष है, यानी कि ऐसा बताया गया है नौ यौवनम च। भगवान हमेशा क्या रहते हैं? जवान रहते हैं। और कंदर्प कोटि कमनिया विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। अनगिनत जो कामदेव होते हैं उनसे भी ज्यादा भगवान सुंदर है और उनका सुंदरता का कभी नाश नहीं होता। भगवान कभी बूढ़े नहीं होते क्योंकि भगवान का शरीर क्या है? दिव्य है। तो हमें क्या है कि दिव्य वस्तु का कोई अनुभूति नहीं है, इसके लिए हम भगवान की तुलना सोचते हैं कि हमारे जैसे ही भगवान होंगे, वो भी बूढ़े होते होंगे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे बोलते हैं भगवान मर जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि जो भगवान है, शंकराचार्य बोलते हैं नारायण पर अव्यक्तात्, भगवान इस भौतिक सृष्टि के परे हैं और हमारे दृष्टि के परे भी हैं। और भगवान ने कृपा करके अपने अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हुए हैं ताकि हम इस हड्डी मांस और चमड़े से बने हुए आंख से भगवान का दर्शन कर सकें। नहीं तो भगवान को देखने के लिए क्या चाहिए? प्रेमा अंजन वाला आंख चाहिए जिसमें कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य नहीं है। वो व्यक्ति को भगवान दिखाई देते हैं। जब तक हमारे हृदय में भोग करने की इच्छा होती है या मात्सर्य होता है, हम दूसरे को देख नहीं पाते हैं कि ये व्यक्ति हमसे ऊपर कैसे जा रहा है, कैसे इसको ज़्यादा ज्ञान है मुझे कम है, और कैसे इसको इतना सारा सुविधाएं मिल रही हैं, ये मात्सर्य है। तो अगर हम उसको सह नहीं पाते हैं तो हमारे अंदर वो एनवी है, मात्सर्यता, जिसके कारण क्या होता है कि हम अंदर में जलते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम दुखी रहते हैं। तो क्या है कि जब तक हमारे हृदय के अंदर ये सारे गंदगी रहती है, ये छह गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, तो गंदे स्थान पे कोई भी व्यक्ति रहना नहीं चाहता। हर व्यक्ति साफ जगह पे बैठना चाहता है। तो हर व्यक्ति के हृदय में ये छह जो गंदगी है उसका वास होता है। और ये निकलता है कब? जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जब हमारा हृदय शुद्ध होने लगता है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, वो बढ़ता है और भगवान के प्रति आसक्ति, रुचि, आकर्षण सब आता है। और फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो भौतिक संसार है ये क्षणभंगुर है और जो भी यहाँ पे वस्तु हैं वो क्या है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव, आकर्षित दिखते हैं, लेकिन जब हम उसके पास जाते हैं तो अपना भयानक रूप दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि वो कितना गंदा है और उससे हमें कोई सुख नहीं मिलता है, कोई शांति नहीं और कोई संतुष्टि नहीं मिलता है, बस हम केवल दुखी हो जाते हैं। तो अगर हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के मंदिर में आते हैं, भागवतम का प्रवचन सुनते हैं, भगवत गीता का प्रवचन सुनते हैं, तो क्या होता है, उससे हमें ज्ञान होता है कि भगवान कौन है, हम कौन है, भगवान से हमारा क्या संबंध है, ये दुनिया क्या है, समय क्या है, कर्म क्या है, और भी बहुत सारे चीजों का, जिससे हमारे मन के अंदर जो भी कंफ्यूजन है, दुविधाएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं और हम पूरी तरह से समझ जाते हैं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है और कैसे मैं भगवान की प्राप्ति कर सकता हूं। तो भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है और जो ज्ञान है उसका स्रोत भगवान है, जो गीता के 15वें अध्याय में भगवान ने कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सनाविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेदाविद वचाहम। भगवान बताते हैं कि सारे जो ज्ञान होते हैं वो मेरे से ही आते हैं। वेद का अर्थ होता है ज्ञान और वेदांत का अर्थ होता है जो अंत है ज्ञान का, वो भगवान ने संकलन किया है वेद व्यास के रूप में। और वेदों का, ज्ञान का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण को जानना। क्योंकि अगर हम भगवान को नहीं जानते हैं और इस भौतिक संसार के चीजों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, सोचते हैं कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो क्या है कि अगर हम कुछ समय के लिए थोड़ा सुख प्राप्त कर लेते हैं तो भी क्या होता है, अंततः हर व्यक्ति को एक दिन मरना है और मरते समय हर व्यक्ति सब कुछ छोड़ के जाते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेके नहीं जाता है। तो क्या फायदा उस चीज के लिए मेहनत करके जो छूटने वाला है, हमें मेहनत करना चाहिए उस चीज के लिए जो जाने वाला है हमारे साथ। और ऐसा बताया गया है आचार्यों के द्वारा कि हमारा जो धन है वेल्थ जो है वो क्या है, कृष्णा नाम, कृष्ण भक्ति, कृष्ण सेवा। और ऐसा बताया गया है चैतन्य चरितमृत में और चैतन्य भागवत में कि चैतन्य महाप्रभु बोलते थे जो व्यक्ति 1,00,000 नाम जप करता है वो व्यक्ति क्या है, मतलब धनी है और मैं उसके घर पे जाके प्रसाद खाऊंगा। तो जो असली धन है वो क्या है, भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा और भगवान को याद करना। बाकी जिस धन को हम धन बोलते हैं वो क्या है, नाम मात्र का है। तो भगवान क्या है, सारे ज्ञान का उद्गम है और सारे धन के जो स्रोत हैं वो कौन है, भगवान और लक्ष्मी माता के पति हैं। और भगवान सर्व प्रसिद्ध हैं। अभी प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में इस्कॉन का मंदिर है, हरे रामा हरे कृष्ण मंदिर है, और वहां पे भगवान श्री कृष्ण की पूजा किया जाता है। और केवल भारतीय लोग नहीं, पूरे विश्व में हर व्यक्ति को पता है कि भगवान कौन है, कृष्णा, प्रभुपाद जी की कृपा से। अगर वो इस्कॉन के मंदिर में आते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि भगवान कौन है, भगवान श्री कृष्णा। और कौन बोलते हैं, ब्रह्मा जी, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ये ब्रह्मा जी महाजन है, स्वयंभू इनका नाम है, क्योंकि ये किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिए हैं, इनका जन्म हुआ है कमल के ऊपर, जो कमल भगवान गर्भोदक साईं विष्णु के नाभि से प्रकट हुआ था। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं वो इस सृष्टि के पहले जीव हैं और वो अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं ईश्वर परमा कृष्णा। कृष्णा क्या है, परम है, परम भगवान है, परम ईश्वर है। और सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। तो भगवान के छह ऐश्वर्य हैं और ये छह ऐश्वर्य क्या हैं, पूरा फुल मात्रा में भगवान के पास हैं। इस संसार में अगर कोई व्यक्ति धनी है तो हम आकर्षित होते हैं, लेकिन वो जो व्यक्ति है और जो उसके पास धन है वो भगवान का एक क्या है, छोटा सा विभूति है बस। गीता में भगवान ने कहा था 10वें अध्याय में, यद्यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत ऊर्जितम एववा तत्तद एवा गच्छत्वम मम तेजम स संभवा। ये मेरे विभूति का एक छोटा सा अंश है। तो सोचिए अगर अंश से व्यक्ति इतना आकर्षित हो जाता है तो जो पूरा सोर्स है यानी कि स्रोत है सारे सुंदरता का या धन का ज्ञान का, तो कितने सुंदर होंगे हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन शास्त्रों में और आचार्यों ने जो हमें बताया है उसको पढ़ के सुन के हम थोड़ा समझ सकते हैं। तो इस भगवद गीता के 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन पहले श्लोक में कहते हैं, मद अनुग्राह्य परमम गुह्यम अध्यात्मम सम्यगितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेना मोहयम विगतम ममा। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, आपकी कृपा से जो भी मेरे मोह थे वो क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। क्योंकि दसम अध्याय में भगवान ने चतुर्श्लोकी मतलब चार श्लोकों में भगवद गीता बोला गया है। भगवान श्री कृष्णा ने उसके बारे में बताया, अहम सर्वस्य प्रभवा मत सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता, कि मैं हर चीज का स्रोत हूँ। ये भौतिक आध्यात्मिक जगत जो भी कुछ आप देखते हैं और नहीं देखते हैं वो सब कहाँ से आते हैं, कृष्णा से आते हैं। और जो बुद्धिमान मनुष्य इसको जानता है वो क्या करता है, भगवान की सेवा में लगता है। और फिर भगवान आगे कहते हैं, मत चित्ता मत गता प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जब व्यक्ति जान जाता है और भगवान की भक्ति में लगता है तो भक्ति कैसे करता है, मत चित्ता मत गता प्राण, अपने मन को चित्त को भगवान में लगा के और दूसरे भक्तों के साथ में भगवान की दिव्य कथाओं का गुणगान करता है, जिससे क्या होता है उसको दिव्य आनंद आता है। और फिर भगवान आगे बोलते हैं, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन माम उपयान्ति इति। जो इस प्रकार सततयुक्तानां, तो देखिए यहाँ पे एक भक्त बता रहे थे कि भगवान क्या बोल रहे हैं, 24 आवर्स सतत युक्ता नाम, हमेशा आप मेरा भजन करो और वो भी प्रीति पूर्वक, जो हम जैसे जीव आत्मा के लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए प्रभुपाद जी ने क्या बोला, 16 माला जप करो, जो हमारे लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन प्रभुपाद जी और जगह बोलते हैं कि ये जो 16 माला है ये विदेशी लोगों के लिए है। वृंदावन में और भी भारत में ऐसे ऐसे संत हैं जो दिन भर भगवान के नाम लेते हैं वो लोग, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें भी भगवान का नाम निरंतर लेना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस भगवद गीता के 11वें अध्याय का जो संक्षिप्त रूप है वो इस प्रकार है। भगवद गीता के 11वें अध्याय के श्लोक 1 से 4 में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। और फिर श्लोक 5 से 14 में बताया गया है भगवान के विराट रूप का वर्णन, डिस्क्रिप्शन है यूनिवर्सल फॉर्म का। और फिर 15 से 45 में अर्जुन भगवान के विराट रूप को प्रार्थनाएं करते हैं। और फिर 45 से 52 तक भगवान श्री कृष्णा अर्जुन को अपना 4 भुजाओं वाले रूप दिखाते हैं और फिर 2 भुजाओं वाले रूप श्याम सुंदर रूप में आ जाते हैं। तो अर्जुन क्यों भगवान से प्रार्थना किए कि मुझे आप अपना विश्व रूप दिखाइए, क्योंकि वो पहला रीजन ये था कि वो जो दुनिया में लोग हैं वो क्या हैं, उनको कन्विंस करना चाहते हैं, उनको समझाना चाहते हैं कि कृष्णा भगवान है, क्योंकि लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। लोग बोलते हैं अगर आप भगवान हो तो दिखाओ, कैसे आप भगवान हो। तो अर्जुन ने बोला भगवान को विश्व रूप दिखाओ, क्योंकि कलयुग में बहुत भगवान लोग आएंगे और वो क्या करेंगे, लोगों को धोखा देंगे। और प्रभुपाद जी जब अमेरिका में थे तो हमेशा नए नए भगवान लोग इंडिया से जाते थे और वहां पे लोगों को धोखा देते थे, क्योंकि वो भगवान नहीं थे, वो योगी थे। और वो लोग क्या करते थे, कुछ मिस्टिकल परफेक्शन होता है, योगिक सिद्धि, और उस सिद्धि के द्वारा बहुत सारे चमत्कार करते हैं। तो आज के संसार में क्या है, चमत्कार को लोग नमस्कार करते हैं। अगर कोई चमत्कार करता है तो हम क्या बोलते हैं, ये भगवान है। लेकिन अगर वो सच में भगवान है तो वो छोटा सा सोना का एक टुकड़ा क्यों बनाता है, उसे सोने का खान बनाना चाहिए। भगवान ने सोने का खान बनाया है। अगर सच में कोई भगवान है तो अपने हाथ से वो छोटा सा थोड़ा सा ऐश निकालता है, राख। भगवान ने बहुत सारे राख के खान है, कोयले का खान बनाया है, तो खान नहीं बना सकते, क्योंकि हम जीव आत्मा है, हमें अनु कहा गया है शास्त्रों में, और भगवान को विभू। भगवान की शक्ति क्या है, अनलिमिटेड। अगर आपको जानना है भगवान की शक्ति तो यहाँ पास में समंदर है, ऊपर आकाश है, उसको देखिए, वो लिमिटलेस है, उसका कोई अंत ही नहीं है। तो बनाने वाला जो क्रिएटर है वो कितना महान होगा कि ऐसा वस्तु बनाया है जिसका कोई ओर छोर नहीं है। समंदर को भी हम देखते हैं तो उसका कोई अंत ही नहीं दिखाई देता। तो भगवान जो क्रिएटर है, क्योंकि जब सृष्टि होती है तो कर्ता भी होते हैं, तो भगवान की जो महानता है वो हम इस सृष्टि को भी देख के समझ सकते हैं। लेकिन क्या है कि हम अज्ञानता में हैं, इसके लिए हम मतलब भगवान में रुचि नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं भगवान का नाम लेके, भगवान की भक्ति करके और भगवान में लग के हमें मिलेगा क्या। इसको बोलते हैं फ्रूटी मेंटालिटी। इसको एक कर्म कांडिया भाव होता है कि कैसे अगर मैं बाहर कुछ नौकरी करता हूँ, कुछ काम करता हूँ तो पैसा मिलता है। तो उसी प्रकार लोग मंदिर में आते हैं ताकि कुछ मिलेगा। तो ये भाव ठीक है, लेकिन क्या है, ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि आप मानो या ना मानो, आपके बिना माने भगवान आपको हर चीज दे रहे हैं। हमें जीने और खाने के लिए जो भी चाहिए वो भगवान देते हैं। पानी चाहिए पीने के लिए, इतना वर्षा हो रहा है। हवा चाहिए, हर जगह हवा विद्यमान है। अन्न चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते थे कि इतना सारा जगह खाली पड़ा है। वो जब अमेरिका में जाते थे या अफ्रीका में जाते थे तो उधर देखते थे इतना सारा जगह खाली है और वहाँ पे लोग कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो जानवरों को मार के खाएंगे, लेकिन जमीन है वहाँ पे खेती करके अन्न उगा के नहीं खाएंगे। तो जमीन भी बहुत सारा है और हमारे पास भगवान ने शक्ति भी दिया है, बुद्धि भी दिया है, तो हम खेती करके बहुत सारा अन्न उगा सकते हैं और जिससे हमारा पालन पोषण आराम से हो जाएगा। लेकिन हम नहीं करते। हमें क्या है, ये फैक्ट्री में जाना है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्या होता है, वहाँ पे ऐसा कार्य होता है, उग्र कर्म होता है। उग्र कर्म मतलब आसुरी कार्य होता है। वहाँ पे लोहे के मशीन होते हैं और वहाँ पे आपको एक बार में वो मशीन की सहायता से मतलब बहुत सारे चीज़ों को उत्पन्न किया जाता है थोड़े से समय में। अगर मनुष्य प्रयास करे तो उसको बहुत समय लगेगा। लेकिन क्या होता है, उसमें बहुत लोगों का हाथ कट जाता है, पैर कट जाता है, कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। तो बहुत सारे समस्याएं हैं और उसमें फायदा केवल एक व्यक्ति को होता है, मालिक को, और बाकी वर्कर लोगों को थोड़ा बहुत मिलता है। नहीं तो मालिक को सारा पैसा मिलता है, लेकिन नुकसान बहुत लोगों को होता है। कंपनी से जो गंदे वो तेल निकल ये पानी निकलते हैं केमिकल वाले, वो नदियों को दूषित कर देते हैं, और जो धुआं निकलता है वो हवाओं को दूषित कर देते हैं, और जिसके कारण क्या है, आजकल हर चीज पॉल्यूटेड हो गया है, दूषित हो गया है। वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, हर चीज पॉल्यूटेड हो गया है। तो क्या होता है कि जब हम भगवान जो हमें वस्तु दे रहे हैं उसको हम स्वीकार नहीं करके अपने खुद के जो 250 ग्राम का ब्रेन है उसका इस्तेमाल करके हम भगवान के जो बनाई गई ये प्रक्रिया है उसके विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, और सोचते हैं कि अगर हम इस प्रकार से कार्य करेंगे तो सुखी बनेंगे, तो रिजल्ट क्या होता है, जो परिणाम है वो क्या होता है, दुख आता है। आज देखिए हर व्यक्ति दुखी है, और सबसे ज्यादा जो दुख है आजकल लोगों को मिलता है वो मान से मिलता है, मानसिक। और गीता में भगवान बोलते हैं बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य एन एव आत्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तते आत्मा एव शत्रुवत्। अगर आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करते हैं तो मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। सोचिए अगर हम अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ में रह रहे हैं हमेशा तो क्या करेगा, हमारा नुकसान करेगा हमेशा। और इस संसार में हमने क्या किया है, ये सबसे बड़ा शत्रु जो अनियंत्रित मन है उसको हमने अपना बेस्ट फ्रेंड मान लिया है। हम सोचते हैं मन हमारा सबसे बड़ा मित्र है, और क्या होता है वो मन हमें क्या करता है, घुमाते रहता है। भागवतम का पंचम स्कंद का श्लोक है, यस्यस्ति भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन अस्ति धावतो बही। हम मन रूपी रथ के ऊपर बैठ के भ्रमण कर रहे हैं, मन बोलता है ये अच्छा है, और कुछ समय के बाद जो मन है वो क्या बोलेगा, ये अच्छा नहीं है, चलो अभी दूसरा लेते हैं। मैं कुछ समय पहले पार्ला में एक मोबाइल का शोरूम है वहां गया था, तो वहां पे देखा जो एंड्रॉयड मोबाइल होते हैं उसके कवर का हजारों हजारों प्रकार का कवर थे जो मोबाइल को लगाते हैं कवर, तो रंग बिरंगे थे, क्योंकि क्या होता है हर सेकेंड हमारा मन बदलता है, मन का ये स्वभाव है संकल्प विकल्प। तो एक भक्त बता रहे थे ये जो मन है इसको भगवत गीता में अर्जुन ने कहा है चंचला ही माना कृष्ण परमाथी बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रेवा सो दुष्करम, कि ये मन चंचल है। जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं उसको अगर आप बैठाना चाहेंगे एक जगह पे वो नहीं बैठेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, कभी गिर जाता है सीढ़ी से, सर फूट जाता है, तो फिर परेशानी होती है। तो उसी तरह हमारा मन है जो एक जगह नहीं रहता है, तो इसके लिए मन को हमें किसी चीज में इंगेज करना होगा, लगाना होगा कोई उत्तम चीज में, वो क्या है, भगवान का नाम लीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो मन को बोला गया है परमाथी, परमाथी मतलब पागल, और नूनम परमत्ता, परमत्ता मतलब पागल होता है संस्कृत में, और ये सुपरलेटिव डिग्री है, यानी कि मन बहुत ज्यादा पागल है, सबसे ज्यादा पागल है। अगर आप पागल खाने में जाओगे तो लोग बहुत कुछ बोलते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि टेररिस्ट लोग भारत पे आक्रमण करने आ रहे हैं, मुझे बंदूक दो और मैं उनको मार के भारत का रक्षा करूंगा। आप जब सुनोगे तो हंसोगे, क्योंकि आपको पता है पागल है, और इस पागल को कुछ पता नहीं है, कुछ भी बकवास कर रहा है। उसी तरह हमारा मन बहुत सारा बकवास करता है, और हम क्या करते हैं इस मन के बकवास को सीरियसली ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है हम दुखी होते हैं। तो शास्त्रों में बताया गया है मन क्या है, पागल है, और पागल व्यक्ति को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। सीरियसली हमें किसे लेना चाहिए, भगवान को, भगवान की भक्ति को, भगवान के नाम को, और भगवान की सेवाओं को, ताकि क्या हो, हमारा जीवन सफल हो। नहीं तो ये मन क्या करेगा, हमें इस संसार के जो भोग विलास है या संसार का बंधन है या संसार में जो दुख है उसमें ही लगाते रहेगा बार 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 बार। और ऐसा बताया गया है कि हम एक गलत कार्य करते हैं, दुखी होते हैं, क्योंकि गलत कार्य का परिणाम दुख होता है, और हम मन के कारण कर देते हैं उस कार्य को, और फिर हमें जब सजा मिलती है तो हम समझते हैं नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में मन फिर से हमें वही कार्य को करवाता है। बार 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 हम उसी कार्य को करते हैं और दुखी भी बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम मन के अधीन हैं, और इस मन के अधीनता से हमें मुक्ति कब मिलती है, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं। और जैसे द्रौपदी माता ने दोनों हाथ उठा के भगवान का शरणागत हुई और उन्होंने भगवान का नाम लिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान प्रकट हुए और उनकी रक्षा की है। तो उसी प्रकार जब हम भगवान के शरणागत हो जाते हैं तो भगवान की कृपा से हमें शक्ति मिलती है, ताकि हम इस मन को नियंत्रित कर पाए या उसको नेग्लेक्ट कर पाए या उसको सीरियसली नहीं ले। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्त बिंद की, वांछा कल्पतरु भयश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
Gagana Lalita